के 52 अवसर पर हम लोग स्वागत करते हैं। आज बहुत ही जो है पावन दिवस है। आप बता सकते हैं क्या क्या है? पेपर तो वैसे लीक कर दिया। जय धनी। आज के दिन जो है भगवान की दामोदर लीला हुई थी। दामोदर लीला मतलब जो आप ये पेंटिंग देखते हैं जिसमें यशोदा मैया ने कृष्णा को मारा है, ये आज के दिन हुई थी। इसलिए इस मास को, कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहते हैं। दाम को बोलते हैं रस्सी और उदर मतलब पेट। भगवान को बांधा गया था आज के दिन। जो गलत काम करेगा पिटाई तो होगी। तो हमारी सरकार भी जो है इसलिए जो लोग कुछ गलत करते हैं तो उनको बांधती है, उनको सजा देती है। तो सजा का प्रावधान जो है चला रहा है हमेशा से, क्योंकि इस सृष्टि में अगर अच्छे लोग हैं तो हम भी हैं, ठीक है ना। तो ये परंपराएं चली आ रही हैं और इसलिए जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान को आना पड़ता है पुलिस का रूप में। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि हो जाती है तो मुझे आना पड़ता है। क्या करने के लिए? परित्राणाय साधुनां विनाशाय च। ये दोष लोग तो भारत में सबको याद है, महाभारत देख के सबको याद हो गए थे, है कि नहीं? तो बट इसमें बड़ा अच्छा संदेश मिलता है कि भगवान कृष्ण जो है साफ साफ घोषणा कर रहे हैं कि जब जब इस मेरे द्वारा बनाई गई इस सृष्टि में जो है उत्पात मचेगा, तो जैसे मैं उत्पात मच रहा था कोई गया है। तो हम कहते ऐसे ही जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होगी, है ना, उत्पात मचाया जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा, भगवान कहते हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं हर युग में आया। क्या करने के लिए? सेटलमेंट करके वापस आ गए। तो कई बार भगवान स्वयं आते हैं और कई बार अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं, है ना। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता ना, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि दो लड़े लोग वहां पर आवाजें तेज करें। तो फिर भगवान को अपनी प्रकृति में जब देखते हैं कि बहुत ज्यादा कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, मारकाट कर रहे हैं, ब्राह्मणों की, स्त्रियों की, बच्चों की, बुजुर्गों की, गायों की हत्या हो रही है या उनको रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही, तो यह धर्म है। और इस प्रकार फिर क्या होता है, भगवान या तो स्वयं आते हैं या किसी का एम्पावर कर देते हैं कि जाओ करके आओ कुछ। तो दामोदर सुंदर को एक रोल निभाया, शांति दूत बनकर गए। तो इस प्रकार जो है हम देख सकते हैं कि पूरे इस प्रसंग में जो ये दामोदर लीला का हुआ, ये बहुत ही सुंदर प्रसंग है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, लेकिन भगवान की लीलाओं को जितनी बार भी सुन ले, जिन लोगों की कंडीशनिंग ज्यादा है उनको मजा नहीं आता है। क्या वही तो है, बांधी तो था और क्या था, नहीं पता ऐसा कुछ। और जिन लोगों की कंडीशनिंग धीरे धीरे उतर गई है कृष्ण कथा सुन सुनकर, भाई अगर गंदगी ज्यादा है और साबुन की चक्की बार बार रगड़ी जाए तो कपड़ा साफ हो जाता है, रिंग की तरह से चमकार मारता है। उसी तरह जिनकी कंडीशनिंग ज्यादा है तो उसको विश्वास नहीं होता कि नहीं नहीं ठीक है, एक बार सुन लिया और क्या है, व्हाट नेक्स्ट। इसलिए हमने देखा इस कई कई भक्तों को जो लीला का श्रवण करते हैं बाद में वेराइटीज चाहते हैं, ये तो हो गया बाल लीला, तो मुझे अब व्हाट नेक्स्ट, मुझे अब आगे बताइए कुछ वो बताइए। तो ऐसे लोग जो है बहुत जल्दी मूवमेंट से गायब हो जाते हैं, वो ढूंढते रहते हैं और कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा। और क्योंकि उनको एक अलग प्रकार का स्वाद चाहिए, मनोरंजन चाहिए। वास्तव में वो कृष्ण कथा मनोरंजन की हो रही है, मन को रंजन कैसे मिलेगा। इसलिए भारत को कई बार लोग बोलते हैं कि भारत की पहचान किस रूप में मालूम है विदेशों में, कौन बताएगा कि वो देश है जहां पर सबसे ज्यादा मूवीज बनती है। हमें लगा कि शायद आध्यात्मिकता के रूप में आ गया, लेकिन विदेशों में लोगों को सबसे ज्यादा जो है मूवीज ही बनती है। और तीन तीन घंटे लोग जो टीवी आगे से बैठे थे, कुछ करने को नहीं, और इतनी मूवीज बन रही है, एक बना रहा दूसरा, हर व्यक्ति मूवी बना रहा। तो सबसे ज्यादा ये फिल्में बनाने का देश है। तो वैरायटी चाहिए हम लोगों को, थोड़े से पैसे मिल दे फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना चाहता है, क्यों वैरायटी चाहिए उसको। इसलिए मूवीज बन रही है, बार बार रिपीट हो रही है, वही विलियन, वही एक हीरो, वही एक हीरोइन के चक्कर, वही घर की कहानी, बार बार फिल्मों में इसको तोड़ मरोड़ कर किसको मार दिया, तो सस्पेंस है ना, कुछ डिशन डिशन दूसरे टंके दिखा दिखा दी, मतलब अजीबो गरीब, और वही कथाएं वही लीलाएं। अच्छा वास्तव में ये सब लीलाएं तो कृष्ण की कॉपी की गई है ना, कृष्ण की जो अध्यात्म जगत में वृंदावन में जो लीलाएं होती है उन्हें सब का जो है यहाँ पर एक विकृत रूप कर दिखाया जाता है स्त्री और पुरुष के प्रसंगों में। तो वैरायटी चाहता लोग, इसलिए लोग मनोरंजन चाहते, इसलिए जब कंडीशन सोल में कृष्ण कथा सुनने का प्रयास करते तो मनोरंजन चाहता है। हमें कोई लोगों ने बताया कि जब कोई भागवत सप्ताह होता है तो उसमें खूब मनोरंजन किया जाता है, आज ये उत्सव है, आज ये उत्सव है, आज पैसे लाओ, आज सुनो दिखा लो, आज ये क्या क्या होता है। तो इस प्रकार जब इस ध्येय से कथा की जाती है, इस भाव के सुनने वाले लोग होते हैं तो प्रभाव नहीं पड़ता ऐसा होता। ऐसा बताया गया कि कलयुग में भागवत कथा होगी लेकिन जिन कथाओं के पीछे उद्देश्य धन रहेगा तो वो कथा का प्रभाव जीरो हो जाएगा। तो आप लोगे नहीं प्रभु जी ऐसा तो नहीं, हम तो सुनते हैं, वहां भी सुनिए वहां भी सुनिए। हाँ लेकिन आपका भाव ठीक है, आप कथा धन के लिए नहीं सुन, बिल्कुल जिसने कराई है वो कथा उसका पीछे ये था भी मैंने बोल रखा था ये हो जाएगा तो ये कराऊंगा वो हो जाएगा या ये करा रहा हूं इससे ये हो जाए। और फिर जो आता है व्यक्ति कथा करने के लिए उसका भी भाव होता है कि इतना बोलोगे इतना रखोगे तो मैं आऊंगा, इतना दोगे उससे मैं नहीं आऊंगा, तो धन पीछे है। तो इसलिए वो ना किसी पर असर करती है, इसलिए उसमें एंटरटेनमेंट ज्यादा होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले साथ बैठे होते हैं, आंसू निकाले जाते हैं, सब कुछ किया जाता है, लेकिन लोगों के जीवन प्रभाव कुछ क्षणों के लिए तो हो सकता है लेकिन हमेशा के लिए। तो वैरायटी चाहिए लोगों को, इसलिए एंटरटेनमेंट के लिए लोग कथाएं सुनते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कथाएं जो सबको दिव्य आनंद देने वाली है ना, स्वादु स्वादु पदे पदे, वैष्णव जनों के लिए उनके कानों के लिए यह अमृत के तुल्य है। भगवान की कथा के बगैर वो रह नहीं सकते। बता दें जिन लोगों को भगवान की कथा में रुचि हो जाती है वो लोग फिर कृष्ण कथा के बगैर रुक नहीं सकते कहीं। बताया जाता है कि ऐसा भक्त अगर कहीं धोती भी बांध रहा और पता चले कथा शुरू हो गई तो धोती छोड़ के भागना चाहिए। भक्त है वो, रुचि उत्पन्न हो चुकी। तो जिन लोग बताते हैं भक्त लोग भगवान की कथा को ग्लोरीफाई करते हुए भगवान कृष्ण की, कि भगवान की कथा का सुनने का वेग इस प्रकार होना चाहिए हृदय में जिस प्रकार समुद्र सॉरी पर्वतों से निकलने वाली नदियां किस तरफ जाती हैं, समुद्र की तरफ जाती हैं, उसको कहीं रोकने का भी प्रयास करो तो अपना रास्ता ढूंढ लेती है। उसी प्रकार जिन लोगों के हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो चुका है तो उनका स्वाभाविक है भगवान के प्रति आकर्षण, तो वो जाके वहां पर थे। तो भगवान की इन कथाओं में एक बहुत सुंदर कथा थी, जैसे कि हम जानते हैं मथुरा में भगवान कृष्ण अवतरित हुए और जब कंस को यह पता चल गया था कि कृष्ण जो है अवतरित हो गए हैं और अब बस वो मेरा काल है, ये तो कभी भी जो है मुझे मार सकता है, तो बढ़िया ये है कि उसका इंतजार ना करोगे तो मारेगा, इससे पहले क्या करते हैं उसको ही मार देते हैं। तो क्या किया उन्होंने, उनके पास ऐसे ऐसे असुर थे, इतने खतरनाक असुर थे जो कोई भी रूप ले सकते थे, तो उन असुरों को भगवान को मारने के लिए भेजा एक एक करके। पूतना भी गई है ना, वो अपने स्तनों पर विष लगा कर गई लेकिन भगवान ने विषपान किया, स्तनपान किया और उसको भी माता की गति दे दी। असुरों को मारने के बाद ऐसा नहीं होता था कि उसको कुछ उसका नाम भी भेजा बेटा तूने मुझे मारा था तेरी पिटाई होगी, नहीं। कृष्ण जो है परम सत्य है, परम पवित्र है, जैसे अग्नि, अग्नि में आप कुछ भी डालिए वो उसको चला कर स्वाहा कर पवित्र कर देती है। जैसे सूर्य जब उगता है तो सूर्य के तप से, सूर्य के बल से, उसकी शक्ति से सारी अपवित्र चीजें भी कुछ समय के बाद पवित्र हो जाती है। जैसे हम सब जब अपने घरों में जो भी कूड़ा करकट गंदगी करते हैं वो जब नालियों के द्वारा बाहर निकलती है, बड़ी नाली से बड़े नालों में जाती है, बड़े नालों से इस नाले में आती है जो साल में, और इस नाले में वो जमा होकर बाद मशीन उसको बाहर निकाल देती है वो सारी गंदगी, और बाद में वही गंदगी यहीं पड़ी रहती है और एक पर्वत का रूप ले लेती है। अर्थात सूर्य जो है उसको तुम्हारी आंखों के सामने है ना, बाद में मिट्टी का रूप दे देती है, पूरी तरह वो मिट्टी बन जाती है। फिर बाद में दूसरे ट्रक आते हैं वो सारी मिट्टी को निकालते हैं, लोग कहते हैं हमारे घर के लिए मिट्टी चाहिए, तो वो 5,000 रुपए देते हैं वो ट्रक मिट्टी उनके घर में डालते हैं। यही मिट्टी जो है लोग कहते हैं गमलों में, हमें गमलों के लिए चाहिए तो गमलों में लगाते हैं, लेकिन क्योंकि सूर्य ने उसको पवित्र कर दिया है ना, तो इसलिए उसके द्रव दोष नहीं रहा। इसी तरह भगवान कृष्ण जिस भी असुर का वध करते थे तो उसको क्या कर देते थे, पवित्र तो हो ही जाता था, साथ में मोक्ष दे देते थे, कईयों को अपने धाम बुला लेते थे, कईयों को स्वर्ग भेज देते थे। इतना फायदा है भगवान के हाथ में मरने का, तो कितने लोग मरना चाहते हैं भगवान के हाथ, सारे असुर बनना पड़ेगा। भगवान के हाथ मरना चाहते हैं, उसकी प्रतिनिधि के हाथ मरना चाहते हैं कुछ ठीक है। तो अच्छी बात है कि अगर भगवान ही है तो अच्छा है उनको लेने के लिए, लेकिन उसके लिए असुरों जैसी वृद्धि चाहिए, और छोटी मोटी नहीं, सबसे बड़ा असुर बनना पड़ेगा, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा उल्टे सीधे काम करने पड़ेंगे, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप भगवान को आकर्षित कर पाओगे। भगवान कहेंगे कौन है इस मार्केट में, पंजाबी लाख से कौन है, आप सब हाथ खड़ा करोगे क्योंकि इनमें से कौन अच्छा है जिसने सबसे ज्यादा पाप किया, उसको मारने आऊंगा, छोटे मोटे को तो फूक मार के मार दूंगा। तो ऐसा करना पड़ेगा जो पुलिस के हाथ में भी जाना पड़ेगा, कोर्ट के हाथ में भी जाना पड़ेगा, ये तो भगवान के ये प्रतिनिधि जो है सरकार के ये मार देंगे है ना एनकाउंटर में। तो भगवान के हाथों मरने के लिए बहुत प्रार्थना करनी पड़ेगी, खूब प्रार्थना करनी पड़ेगी। भगवान को पुत्र बनाने के लिए भी लोग प्रार्थना करते हैं, तब जाके भगवान प्रकट होते, कहते क्या चाहिए, कहते आप जैसा पुत्र चाहिए, कहते मेरे जैसा दूसरा नहीं है कोई, मैं तो अपने आप में एक हूं, असमूर्ध हुआ, ना कोई समान है और ना ही कोई बढ़कर है, तो मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं ही हूं। फिर आप क्या है, तो फिर भगवान जो है प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार हम लोग जो है अगर भगवान के हाथों अपना चाहते हैं तो उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, खूब प्रार्थना करनी पड़ेगी, दिन ब दिन यहाँ पे विनम्रता पूर्वक बोलना पड़ेगा, हे भगवान अगले जन्म में मुझे भी कहीं अपनी लीला में कोई ऐसा असुर बनाओ ताकि मैं आपके हाथ में। अनुकूल वृत्ति से और प्रतिकूल वृत्ति से भी भक्ति होती है। नारद जी तो एक बार बोलते थे कि प्रतिकूल से भी बहुत अच्छा भाई, नो प्रॉब्लम। पिछले वृत्तासुर के प्रसंग में नारद जी ने ग्लोरीफाई किया कि श्री राधा राधे का मुंशी की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, कहते मेरे ख्याल से इतना अच्छा पसंद है कि मेरे ख्याल से व्यक्ति असुर बनना चाहिए, बढ़िया है, भगवान के हाथ मारे देखो कितनी मेहनत करते रहते हैं, ये ज्यादा अच्छा नारद जी ने ऐसी होती भी अच्छा है। तो जैसे आप लोगों ने हाथ खड़े करे कुछ लोगों ने, तो मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत प्रार्थना करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं असुर बनेंगे और फिर भगवान हमारा उद्धार करेंगे। लेकिन अनुकूल भाव से और प्रतिकूल भाव में अंतर यह है कि प्रतिकूल भाव के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिविटी चाहिए ना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अनुकूल भाव में मेहनत नहीं करेंगे, लोगों के अंदर स्वाभाविक प्रेम है हर एक के अंदर, और शांत स्वभाव में दास्य स्वभाव रूप में रस में सांख्य रस में है ना, वात्सल्य रस में और माधुर्य रस में हम लोग उनकी सेवा कर सकते हैं, उनका प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो असुरों को भेजा जाता था और वो असुर जो मरते थे वो भी पवित्र हो जाते थे, वो भी उनको भी मोक्ष प्राप्त हो जाता था। तो इसी प्रकार एक बार एक असुर को भेजा, उसका नाम था अगासुर, बहुत सारे असुर थे। तो अगासुर भी जो है बहुत खतरनाक था, उसको भी भगवान ने मारा। तो इस प्रकार कई कई असुरों को मारते थे, लेकिन एक बार जैसे धन के घमंड में हम लोगों के अंदर भी थोड़ा सा अहंकार आ जाता है कि नहीं, हर व्यक्ति बोलता है तो मुझे जानता नहीं है, क्यों बोलता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मालूम नहीं मेरे बैंक में बैलेंस कितना है या मेरे पीछे कौन कौन है। तो स्वर्ग के जो कोषाध्यक्ष हैं कुबेर जी, उनकी दो संतान है, सारा पैसे उनके पास है देवताओं का है ना, और उनसे लोन भी लेते हैं देवता लोग। तो उनके जो बेटे हैं नलकुबर और मणिग्रीव, ये दोनों जो हैं, पिताजी के पास पैसा ज्यादा था तो क्या किया, अय्याशी शुरू कर दी है ना, और फिर इतनी खतरनाक की कि वो सारे उल्टे से काम शुरू कर दिए उन्होंने, और पैसा भोग विलास में लगाने लगे, स्त्रियों के साथ स्नान करने लगे, शराब इत्यादि पीने लगे। तो एक बार किसी पॉन्ड में घुस गए वो, और नग्न स्त्रियों और ये दोनों भी नग्न अंदर शराब पीकर, तो नारद जी उधर से गुजरे। नारद जी ने देखा अरे नलखोर मणिपुर, तो स्त्री ने देखा नारद मणि जी आए, तो उन्होंने अपने तन को ढक लिया। लेकिन जो ये दोनों थे कौन नलखोर मणिपुर यहां से आगे बाहर, हेलो नारद जी यहां क्यों आ गए, आप तो ब्रह्मचारी हो। नारद जी ने कहा अच्छा नंगे रहने का ज्यादा शौक है तुम्हें। उसी समय उन्होंने क्या किया, श्राप दे दिया। श्राप देकर क्या बना दिया उनको, कहा तुम वृक्ष बन जाओ। देखिए भक्तों के श्राप में भी क्या होता है, कहने की कृपा होती है। पेड़ तो बनाया लेकिन कहां का बनाया, नंद महाराज के आंगन का पेड़ बनाया। यमुना अर्जुन दो महान वृक्ष ऊंचे ऊंचे, तो इस प्रकार का उनको श्राप दिया। हो सकता है नलखोर मणिग्रीव को लगा होगा श्राप दे दिया, क्या गलती की थी हमने, जब उतरी होगी तो उनको लगा होगा तो ठीक है उनको लगा के पेड़ बना दिया। ऐसे ही देखा लगता है आजकल के समाज में भी लोग ज्यादा नग्न रहना पसंद करते हैं, और इसलिए आप देख सकते हैं पहले तो कह रहे थे कि वृक्ष खत्म होते जा रहे हैं लेकिन अब फिर से वृक्ष बढ़ रहे हैं तो उसका कारण ये भी है कि लोगों की इच्छा के अनुसार जब नग्नता बढ़ रही है तो वृक्ष की उनियां भी बढ़ रही है। दोबारा से दिल्ली में एक समय बहुत कम पेड़ थे है ना, लेकिन अब अचानक जो है पेड़ों की संख्या बढ़ने लगी है, लोगों घरों में गमलों में छतों में वृक्षों में हर जगह वृक्ष ही वृक्ष है जो नग्न कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो उनको यमलार्जुन के रूप में जन्म मिला महाराज नंद के यहाँ। और एक बार क्या हुआ, हमारे जो नाना कृष्ण जो है इनके छोटे से थे क्रॉलिंग बल चलते थे है ना, तो ये माता के पास है, माता उस समय क्या कर रही थी, दही बुला रही थी। हम लोगों ने देखा ही नहीं था, कभी मिलते नहीं ऐसे देखने ऐसा करने वाले नहीं, सीधा 10 रुपए दो डब्बा मिल जाता दही का बड़ा मुश्किल हो गया है दिखाना चाहिए। तो माताओं को तो आता होगा घर में, वो भी कैसे करते होंगे, उसे भी करते होंगे, दही सुना है मिक्सी में बनते हैं, मिक्सी में बनता है, सपने रह गए ये सब देखने में। ठीक है चलो भगवान उदिन वापस लाए, वैसे आएंगे जल्दी। लिखा है कलयुग में विश्व शास्त्रों में कि कलयुग में इतने पाप पड़ जाएंगे, राजा लोग इतने टैक्स लगाएंगे कि लोग जंगलों की तरफ जाएंगे रहने के, घर छोड़कर जंगलों की तरफ जाएंगे, जंगलों में जाएंगे गाँव में रहेंगे फिर क्या करेंगे, ये सब करेंगे तो ऐसे नहीं करेंगे तो वैसे करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। तो मैया जो है दही बिलो रही थी और नन्हा कृष्ण आए और मैया को पकड़ लिया पीछे से, और ये जो कृष्ण है ये हृदय सबका प्रेम है इस कृष्ण, और वो जो है मैया को पकड़ के बोलने लगे मुझे भूख लगी है। तो मैया ने कहा अच्छा ये सब तेरे लिए कर गए बेटा शाम को, कहते नहीं नहीं मुझे दूध पीने, कहते अच्छा दूध पिला दे। तो मैया उसको लेके बैठी और अपना स्तन पान कराने लगे। अब जो है नन्हा कृष्ण बहुत आनंद में माता का स्तन पान करते हैं। ये सब लीलाएं आध्यात्मिक जगत में नहीं करते भगवान, इन सब लीलाओं का आस्वादन करने के लिए कृष्ण को ये भाव लीला रचनी पड़ती है। अब ऊपर तो 16 साल के वहां बच्चे थोड़ी बनेंगे किसी का स्तन पान थोड़ी कर सकते, लेकिन वहां 16 साल के रहते हैं शाश्वत रहे उनके। लेकिन जो भाव लीला ये प्रकट लीला होती है इन ब्रह्मांडों में, तो यहां पर भगवान को इन लीलाओं का आस्वादन करने के लिए बाल रूप में आना पड़ता है, अपनी पार्षदों को मोहरा बनाना पड़ता है, और फिर जो है वो अधर्म उत्पन्न करते हैं और फिर भगवान को प्रकट होना पड़ता है, और फिर इस प्रकार की लीला करके भगवान अपने मित्रों के साथ साक्ष रस का आस्वादन करते हैं, चोरी का आस्वादन करते हैं। एक बार बोल रहे थे कि एक बार एक व्यक्ति को रियलाइजेशन हो गया, माथे पे लिखा था उसके कि तेरा बाप चोर है, तो बेचारा पूरी फिल्म में परेशान रहा, किसने लिखा है गलत थोड़ी लिखा, हम सबका बाप चोर है और वो माखन चोर है ना, कृष्ण है वो सबका हृदय भी चुराते हैं माखन भी चुराते हैं गोपियों के वस्त्र भी चुराते हैं, तो समझ नहीं आया नो प्रॉब्लम। तो कृष्णा जो है वो स्तनपान कर रहे थे, तो मैया ने क्या देखा। अच्छा, आध्यात्मिक जगत में हर चीज चिन्मय होती है। चिन्मय का मतलब जिसके अंदर जीवन होता है, हर चीज भगवान के चरणों के जो कर्ण भी है वो भी जीवंत है। सब बोलते हैं, सब बात करते हैं, सबके अंदर फीलिंग्स है, सब ने भगवान से प्रार्थना की थी या उनकी भक्ति की है, इसलिए उनके साथ है ना। और कुछ लोग भगवान के चरणों के कर्ण बन के रहना चाहते हैं। हम पढ़ते ना चैतन्य शिक्षाष्टकम में, क्या बना दो मुझे, अपने चरण कमल की धूलि का एक कर्ण बना लीजिए। तो इस प्रकार कुछ लोग कर्ण भी बनते हैं, कुछ वस्त्र बनते हैं। तो इस प्रकार सबके पास कोई ना कोई वहां पर रूप है। तो वहां पर कमरे के अंदर दूध उबल रहा था। अब ये दूध भी चिन्मय है, उसको मालूम है कि मेरे को जो है आज शाम को कृष्ण मेरा पान करेंगे तो मेरी सेवा पूरी। तो मुझे उबाला जा रहा है, बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन अचानक जब उन्होंने देखा बाहर जाकर, उनको दिखाई दिया कि अरे भैया कृष्णा तो माता का स्तनपान कर रहे हैं, इनका पेट भर जाएगा, फिर शाम को ये मुझे मना करेंगे मम्मी मैं दूध नहीं पीऊंगा। होता ना कई बार घर में बच्चा कुछ खा ले फिर दूध नहीं पीता, मम्मी जबरदस्ती कहती पी है ना, कहते नहीं पीऊंगा है ना, माता जबरदस्ती खिलाते हैं उसको। उसको मालूम है रोज की तेरी एक रोटी और इतना दूध तेरा टाइट है, इतना खा बेचारा कुछ और खा के आगे कहीं से तो जबरदस्ती डालते हैं खा किसी भी तरह। बेचारा रोता है, मम्मी को लगता है भूख भी रो रहा है, बड़ी याद रहते थे। तो इस प्रकार जो है वो दूध ने क्या कहा, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, मतलब मेरा तो फिर फायदा क्या, मेरी सेवा ही नहीं हुई आज। तो उन्होंने क्या बोल कर क्या करा, अपने प्राण त्यागने की कोशिश करी, आग में कूद कर। अचानक मुझे को ध्यान आया कि दूध अंदर उबल रहा है बाहर गिर रहा है, याद आया। तो उन्होंने जल्दी से कृष्ण को बोले कृष्णा छोड़ तेरी सेवा के लिए दूध गिर रहा है शाम के लिए, तो भागी मैया दूध को बचाने के लिए। इधर दूध को बचाया, इधर कृष्ण को गुस्सा चढ़ गया, देखो मालूम मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मैं सेंटर ऑफ लव, मैं गोलोक वृंदावन धाम का सबसे चहेता बच्चा, मैंने अवतार लिया इन सबको अपने साथ लेकर आया मेरी सेवा के लिए, ये मुझे जो है नीचे रख के चले दूध बचाने के लिए। बड़ा गुस्सा है, कमाल है, क्या करूं, देखा साल पत्थर पड़ा था तुम्हारा जोर से उस मटके पे जो सुबह से माँ लगी हुई थी उसमें धड़ाम फोड़ दिया पूरा मटका। और क्या किया, इतना ही नहीं किया, देखो और मक्खन भी उठा लिया उसने थोड़ा, और मक्खन उठा के जाकर बंदर को खिला दिया सारे बंदर को। और मैया जब बाहर आई कहा मटका टूटा पड़ा है, और बाप रे इतना सुबह से मेहनत करी वो सब टूट गया, किसने थोड़ा भाई। तो देखा वो बोले ये कौन भैया, किस में जाएगा शक है ना, घर में चोरी हुई नौकर गायब है तो पति को थोड़ी पकड़ेंगे किसको पकड़ेंगे, नौकर को पकड़ेंगे। उसी तरह ये कहना गायब थे, उनको लगा बेटा ये है कहाँ गया, लेकिन ये बड़ा शरारती हो गया, इतना बड़ा मटका तोड़ दिया। मैया गई ढूंढते ढूंढते, और कहना जो है हमारे बंदरों को मक्खन खिला रहे हैं, हाँ भैया फीसड आज फ्री में मिल रही है, लोग कहते सर मेरा मेरा आज फास्ट आ रहा है, कहते इससे थोड़ी फास्ट चल रहा है ये खाओ, सब बंदरों को खिला दे, खूब खिलाया। और इधर से मैया बिछार दी और हाथ में उठा ली उन्होंने लकड़ी, और लकड़ी उठाकर कान्हा के पीछे भाग, कान्हा ने जैसे देखा मम्मी आ रही है वो कहता भागो, तो वो भी भागकर वो भी भागने लगे। अब माता यशोदा पीछे पीछे और कान्हा आगे आगे, कभी माता आगे कभी कान्हा पीछे आगे, किस तरह जब माता तेज भागती थी तो कान्हा मुड़ जाते थे, माता आगे चले जाते, तो माता का युक्ता लेना पड़ता था। और सुखदेव गोस्वामी बड़े सुख से प्रसन्न मतलब व्याख्या कर रहे हैं कि यशोदा मैया का सुंदरता क्या, उनको बलिष्ठ शरीर हर चीज का, और उसके बाद तो कान्हा के पीछे पीछे भाग गए, और कान्हा डरे हुए कि भैया आज तो लकड़ी भी आती है, और ना ये मैया मुझे हमेशा पहले बुलाती थी प्यार से, करती फिर डांटती थी, इतना तो देखा है आज तक, लेकिन आज मटका फोड़ दिया है तो इसलिए डंडी लेके साथ में चल रही है, आज तो जो है रेल बनने वाली है। तो कृष्ण भाग रहे, मैया यशोदा भी भाग रही है, कृष्णा के छोटे छोटे पैर अगर भागना भी चाहेंगे तो हमारे अगर केशव पुराण को ये कदम रखते हैं तो उनको 5 कदम रखने पड़ेंगे है ना। तो अब माता यशोदा मैया हजरा पास में हाथ आ गया तो और तेज हो जाते, फिर हाथ दूर पूरा घर आंगन पेड़ इधर उधर कितने चक्कर काट लिए, हाथ में नहीं आया। और ऐसे भगवान हाथ में आते भी नहीं। बताया जाता है ये कृष्ण बेचारे जो योगी जन है जो यम नियम आसन प्राणायाम करते हैं धाना ध्यान समाधि करते हुए भगवान के चरण देखते हैं, और कई कई हजार साल ध्यान लगाने के बाद उनके चरणों का दर्शन करना चाहते हैं, उनके नाखूनों का, जो पकड़ नहीं पाते, जिनको कि अपने मन की गति अपने ध्यान की गति से भी पकड़ा नहीं जा सकता, ऐसे कृष्ण किसी के हाथ में नहीं आते। तो यशोदा के हाथ में भी नहीं आ रहे। अरे भैया जिसने सब कुछ बनाया, जो गति में अब गरुड़ जी कितनी तेज है मन की गति से चलने वाले, एक बार जब गजेंद्र को दिक्कत आई नीचे काफी समय हो गया लड़ते हुए राह के साथ, तो गजेंद्र ने प्रार्थना शुरू कर दी, भगवान ने कहा मुझे अपने भक्त को बचाना चाहिए, गरुड़ कहते जी सर चलो बैठे और चल पड़े। अब गरुड़ की स्पीड भी बहुत कम लग रही थी, भगवान के तेज चलो कहते सर ने पांचवा गेट डाला हुआ उसके बाद छत्ता बनाया नहीं। तो गरुड़ बहुत तेज चलते थे, कहते गरुड़ तेज चलो आज क्या बात है, न्यूट्रल पे गाड़ी कर देते हो। तो गरुड़ ने कहा सर मैं बहुत तेज चल रहा हूं, लेकिन भगवान को क्या लगा कि नहीं मेरे भक्त की रक्षा करनी है, वो गरुड़ उसके ऊपर से कूद गए, और कूदने के बाद वहां जाकर पहुंच गए कहां जहां गजेंद्र का पैर उस ग्रह ने पकड़ा हुआ था, और भगवान ने अपना चक्र छोड़ा और उसका काट दिया सर, और गजेंद्र की रक्षा करी, और गजेंद्र ने धन्यवाद किया, भगवान वापस आ गए। रास्ते में मिले कौन, कहते भगवान आप यहां मेरे पीठ पे कौन है, कहते पीठ पे नहीं मैं ही भाई, तो कहते उधर से कहां, कहते मैं रक्षा करा, कहते तुम बड़ी धीरे चल रहे थे, कहते अच्छा तब उनको भी लगा रहे मेरी स्पीड से बोलते चलते वहां, मेरे को तो ऐसे लगा रहा सेवा में मुझे लगता था कि मैं ही सबसे तेज चलता। तो भगवान जो है अपने भक्तों की रक्षा के लिए उनकी गति जो है वो तेज हो जाती है, मन की गति से तो मन की कुछ भी गति नहीं। आप अभी यहां सोच रहे अचानक सोचे अमेरिका है ना, तो अमेरिका पहुंच गए तो इतनी गति से तेज दौड़ते हैं कौन, लेकिन भगवान को इससे भी तेज चाहिए अपने। तो इधर जो है मैया पकड़ने का प्रयास कर रही है, कान्हा आगे भाग रहे, लेकिन अब जो है मैया थकने लगी है, अब मैया के पसीने छूट रहे। तो कान्हा ने कहा थोड़ा ज्यादा हो गया मैया है, इस समय ज्यादा भागना भी नहीं चाहिए मैया, इस उम्र में भगा रहा हूं कितना कष्ट दे रहा हूं मैया। तो कान्हा ने थोड़ा सा अपने को क्या कर लिया, स्लो कर लिया, और फिर मैया ने पकड़ लिया, कहते कान्हा लेकिन हाँ हाथ में तो आ गया चलो आज मैं जो है तुम्हें बताती हूँ, बहुत कष्ट दिया, बहुत सताया, खूब भगाया, ऐसी ऐसी जगह भगाया पूरे घर में जहां जाती भी नहीं थी पलंग के नीचे से पलंग के ऊपर फटके के इधर उधर बताइए कहाँ का घुमाया। और फिर पकड़ने के बाद आज तो तुझे नहीं छोड़ूंगा बेटा, आज तो तू आज आने देना महाराज को, चलो जैसे हमारे अपार करुणा को बैठे खंभे के साथ ऐसे जो है इतना बड़ा उछल रहा। तो मैया ने क्या करा, कहा इधर आओ पकड़ो खड़े, और कान्हा जो डर रहे थे क्यों, क्योंकि हाथ में लकड़ी थी, मैया ने जैसे देखा कि कान्हा हाफ रहे हैं और उनको डर लग रहा है, तो माया क्योंकि माता प्रेम करती है ना, मतलब उस तरह की दुश्मनी थोड़ी कि पड़ोसियों का लड़का आ गया है ना, तो छोड़ना ही नहीं उसको, क्या जी तुम्हारा बेटा हमारा शिष्य तोड़ देता खेलते हुए, ये थोड़ा सा पागल है, कहता अपने घर के क्यों नहीं तोड़ता, इतना पागल थोड़ी है। सबसे पहले जो लकड़ी फेंकी और कि भाई मेरे बेटा है मेरा अपना बेटा है, तो उसको कहा कि आ जाकर देखिए तूने जो है सताया बहुत है बेटा, तेरी माँ हूं मैं तो तेरे को मैं छोड़ूंगी, तूने रस्सी निकाली कि आज जो है तेरे को मैं बांध देता हूँ। तो ऐसे रस्सी पकड़ी और कान्हा को खींचा पीछे थोड़ा सा पकड़ा और रस्सी बांध दी, आपको लग रहा बंध गई, नहीं अभी तो रस्सी खींच रही थी ये टक गई, कहते अच्छा छोटी पड़ गई नो प्रॉब्लम, नहीं लाइन तो बड़ी थी कोई बात नहीं, तो एक रस्सी को उठाती है उसके साथ बांधती है, फिर उसको रोकती है अब बांधती हूँ, तो जैसे बांधती हूँ छोटी पड़ जाती है, कहती है क्या चक्कर है भाई, पहले इतनी छोटी पड़ रही थी, इतनी बड़ी बांधने के बाद इतनी छोटी पड़ रही है, समझ गया। तो फिर और रस्सी लाती है और अंदर से ढूंढ कर लाती है, अब कान्हा तो कहते हैं ठीक है मैया तुम ढूंढ लाओ मैं यहीं खड़ा हूँ, है ना, कहते चलो इतनी तो ईमानदारी है, मैया और लेकर आए ना मुंबई की लाओ, और फिर बांधने की कोशिश की, फिर जैसे पढ़ती थी फिर वो बेचारी दो उंगली छोटी पड़ जाती थी। मैया परेशान हो गई, मैया ये क्या है लड़का, ये ना इसका पेट मोटा है, ना ये खंभा मोटा हो रहा है, चक्कर क्या है, जब मेरे से पीछे घुमाती हूँ तो मेरे से पीछे पीछे छोटी हो जाती है, ऐसा तो नहीं कि मैंने किसी और को बांध दिया पीछे गाय को आ गई लेकिन नहीं रस्सी वही थी और बांधने का प्रयास करती लेकिन दो उंगली छोटी पड़ रही थी। हमारे आचार्य लोग बताते हैं कि दो उंगली का मतलब क्या है, विक्ट्री। हाँ, कि ये जो दो उंगलियां हैं इसमें एक माता का प्रयास मतलब हमारा प्रयास और दूसरा भगवान की कृपा। तो साधकों के लिए ये दो उंगली का मतलब क्या है कि साधक लोग अपने प्रयास में किसी प्रकार की ढील नहीं बरतते, उनका जो प्रयास है उसके प्रयास के आधार पर भगवान कहते हैं ये यथा मां प्रबद्धन्ते तांस तथैव वचामि, कि आप अगर प्रयास करोगे मेरी तरफ आने के लिए मुझे प्राप्त करने के लिए तो जिस तरह का आपका प्रयास होगा, जिस मात्रा का, जिस डिग्री का, जिस लेवल का, उसी मात्रा में मैं क्या करूंगा अपनी कृपा प्रदान करूंगा। तो जो लोग ये बोलते कुछ नहीं हो रहा, बहुत समय हो गया, तो उन लोगों को अपना हृदय चेक करना चाहिए कि मेरे प्रयास किस लेवल के हैं। तो हमारे प्रयासों में कमी होने के कारण दूसरी तरफ से आदान प्रदान ठीक से नहीं होगा। तो हम अगर अच्छे प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान कृष्ण जो है हमारे पर कृपा करेंगे और हमारे भी वश में आ जाएंगे। इधर मैया यशोदा भगवान को बांधने का प्रयास कर रही है, फिर भगवान ने देखा कि फिर परेशान हो गई मैया। मैया का परेशानी तो नहीं देख सकते ना, जब भाग रही थी तो परेशान देखा, थका हुआ देखा, पसीने में देखा, तो पकड़े गए। अभी देख रहे हैं कि चलो पकड़ा लिया, फिर खुशी आई मैया ने, हाँ पकड़ लिया। अभी बांधना प्रयास कर रही है तो क्या हो रहा है, फिर दो उंगली छोटी हो रही है। तो बड़ा मेहनत करने के बाद में नहीं हो रहा, तो भगवान ने कहा ओके बहुत मेहनत कर ली, अब मैं बांधवा लेता हूँ। तो फिर वही रस्सी से मैया ने उसको बांध दिया। खबरदार आप सही लाता, बहुत तंग करता है। फिर मैया अपने काम करने के लिए चले गए। अब जो कन्हैया हमारे, इन्होंने क्या करा है, क्योंकि इनको सब कुछ पता है, यमुना अर्जुन दो वृक्ष है, नारद मुनि नलकोर मणिगिरि कहां पर है, वो आंगन में। तो भगवान ने क्या किया, वो इतना बड़ा जो उखल था उसको हिलाना शुरू करा और धड़ाम से गिरा दिया उसको। अब गिराया तो अपने घुटनों के बल उसको घसीटना शुरू, घसीटते 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 भगवान उन दोनों पेड़ों के बीच में आ गए और उन दोनों पेड़ों से भगवान तो निकल गए लेकिन वो उखल फंस गया। एक जगह है गोकुल में, उस जगह का नाम क्या है, उखल। वहां पर आज भी वो उखल जमीन के नीचे महाकर पंडाल को बताते हैं, वो उखल जिसमें भगवान बताता है। तो मैया सॉरी कृष्णा ने जो है दम लगाना शुरू किया कि फंस गया था, एक बच्चे का ही स्वरूप में उसके और छोटे मोटे साथी जो उधर उधर खेल रहे थे वो देख रहे, अरे आज तो कन्हैया बंदा कह रहे देखो देखो कान्हा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ऐसे स्क्रॉलिंग करता हुआ जा रहा है, इसकी वो शरारती है, तो आज तो इसको पता चलेगा। लेकिन वो जब वहां गया तो देखो हिलाने लगा पेड़ों, इतने बड़े बड़े वृक्ष, अगर किसी पेड़ को काटना होता ना तो ऊपर से क्या होता है, कमजोर होता है, ऊपर से टहनी तोड़ना उसकी और कोई ब्रांच तोड़ना तो आसान है, लेकिन किसी पेड़ को जड़ से गिराना मतलब नीचे से गिराना ये तो बड़ा मुश्किल काम है ना। कोई बहुत बड़े तूफान आते हैं जैसे कि अभी आया था है ना, वो कैसे तूफान वृक्ष गिराते हैं इतनी पावर से आने के बाद। तो कान्हा जो है दम लगा रहे हैं ऐसे ऐसे और वृक्ष ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कान्हा दम लगा रहे हैं और अचानक कान्हा ने एक झटका मारा और दोनों वृक्षों को गिरा डाला। जब वो दोनों वृक्ष नीचे गिरे तो उनके गिरने से इतने विशालकाय वृक्षों के गिरने से जो ध्वनि हुई वो पूरे वृंदावन को थर्रा दिया उसने, सबको लगा पता नहीं परलय आ गई, भूकंप आ गया, उसका रेडियस 9 था 8 था कितना था, ऐसी हालत हो गई, सब लोग घरों से बाहर। किस तरह मैया को लगा कि सब कुछ बर्तन बर्तन गिरने लगे, अचानक तो मैया ने कहा क्या हुआ, भूखा ना भागते हुए भाग, सब लोग बाहर, पूरा गाँव उस समय इकट्ठा हो गया, सबने देखा इतने बड़े बड़े वृक्ष नीचे गिरे पड़े और जब यूं गिरे थे तो जो कान्हा है वो दोनों वृक्षों के बीच में, वैसा थोड़ी भगवान गिरा रहे थे, हाथी पैर आ जाएगा, मालूम तो मालूम है मैंने गिराया, मुझे मालूम कहाँ बचने कैसे बचने, तो गिर के बीच में दोनों वृक्ष गिर गए। अब जिन बच्चों ने देखा ये लाइव टेलीकास्ट उनको रो बाप रे बाप इतने बड़े वृक्ष गिरा दिए, भागो मम्मी करके घर भागे। और जब घर में हुआ तो माता बहन सब लेकर आए, अचानक कान्हा को पहले वहां से उठाया और सब पूछ लगी क्या हुआ, फिर कोई असर तो नहीं आ गया था या फिर किसी ने कोई हमला तो नहीं किया, ये वृक्ष कैसे गिर गए, जरूर कोई देवी शक्ति है या किसी असुर ने कुछ करा, किसी की माया है। इतने में बच्चे बोल पड़े, नहीं नहीं हमने देखा ये कान्हा ने गिराया है। कहते हैं कान्हा ने, नहीं नहीं मैंने तो देखा, कान्हा आ रहा था और उसको रस्सी से बांधा था, ये उखल पीछे फंस गया, कान्हा ने जोर लगाया और ये दोनों वृक्ष धड़ाम से नीचे गिर गए। अब जिन्होंने देखा है उनके बच्चे कहते नहीं, तीनों चारों एक ही बात बोल रहे हैं, उखल में वही मिला, कान्हा बंधा हुआ भी माला जल्दी से खोल के गोदी में उठा लिया। कान्हा गिरा था। अच्छा भगवान की जो ये योग माया है ना, ये इतनी सुंदर ढंग से कार्य करती है, कभी ये ब्रजवासियों को हर चीज भुला के रखती है और कभी कृष्ण को भुला के रखती है। कृष्ण को तो ये भुला के रखती है कि तुम भगवान हो, है ना, तो अगर कृष्ण को ये लगे मैं भगवान हूं तो टांग पे रखेंगे, टांग कहेंगे चलो सेवा करो, तो कृष्ण को भुला के रखती है। और वाल उनको ब्रजवासी को क्यों भुला के रखती है, नहीं तो क्या करेंगे सुबह शाम जैसे हमारे पुजारी लगे रहते हैं पूजा अर्चना, ये करेंगे कृष्ण। अब कृष्ण ने ये अवतार किस लिए लिया, रसों के आस्वादन के लिए, उन लीलाओं के लिए जो ऊपर नहीं होती है वो यहाँ करनी है। अभी यहाँ पर भगवान बन के रहेंगे, अगर हाथ में चक्र चुक्र लेके गदा पदम खतरनाक, वो कहेंगे भैया कौन, नहीं हो सकता। इन अवतारों में जैसे हमारे नरसिंह अवतार हैं, हमारे विष्णु जी हैं, हमारे राम जी हैं, या जो वराह इत्यादि हैं, इन अवतारों से कोई प्रेम कर सकता है, फिर तो मुश्किल है। प्रेम किस सेंस में, मतलब यारी दोस्ती वाला, बात करने वाला। अब नरसिंह भगवान अगर कर रहे और कोई बोले करेंगे बात से ले प्रेम चला रहा है नरसिंह भगवान को देख रहे तो मुश्किल है। ब्रह्मा जी शिव जी हम सबके हाथ खराब थे, कहते तू जा, कहते तू जा, कहते तू जा, कहते कौन जाएगा बाबा, मैं इनको भेज देते हैं मैया को, भैया आप जाओ, कहते मैं भी नहीं जा सकती। लक्ष्मी जी ने भी मना कर दिया, कहते हैं बड़ा खतरनाक नहीं, कहते किसको भेजे, कहते ये जिनकी वजह से आए ना इनको भेजे, कहते भैया जी माला तुम पकड़ो आप जाओ। तो प्रहलाद महाराज का ठीक है मैं जाता, तो प्रहलाद महाराज के और उन्होंने बोला है हरे कृष्ण उसी दिन प्रकट हुए थे। तो उन्होंने प्रार्थना करी और नरसिंह भगवान से वो माला लेकर उनके गले में डाल दी, और जब उन्होंने देखा कि हाँ मेरा भक्त बिल्कुल सुरक्षित है, यही है प्रहलाद, तो फिर उनके साथ उन्होंने उनको छाटना शुरू किया। तो नरसिंह भगवान के साथ या विष्णु भगवान के साथ हम लोग इस प्रकार का रस का आस्वादन नहीं कर सकते, लेकिन कृष्ण के साथ हर प्रकार के रस का आस्वादन किया जा सकता है। इस संसार में कोई ऐसा रस है ही नहीं, अगर किसी को रौद्र रस चाहिए तो भी उधर, किसी को लड़ाई वाला रस कौन सा होता, वीर रस, इसका भी आस्वादन करना तो भी कृष्ण तैयार है। आ जाओ तो भीष्म पितामह ने कहा था, तो कहते हैं जो दो दो हाथ हो जाए नो प्रॉब्लम, और उस रस का आस्वादन किया। तो हर प्रकार के रस जो है, 12 प्रकार के रस बनाए गए, सारे रस के अंदर आ जाते हैं, तो हर प्रकार का रस जो है भगवान के साथ कृष्ण के साथ उसका आस्वादन किया जा सकता है। इसलिए कई बार लोग पूछे कृष्ण क्यों सब कुछ, कृष्ण परम क्यों, ये परम नहीं वो परम नहीं, तो रसों के आस्वादन 64 कलाओं का जो गुणों का जो भगवान के अंदर समावेश, ये इस वजह से कृष्ण सारे अपने अवतारों से अलग है। तो चार जो मुख्य हैं, रूप माधुर्य, वेणु माधुर्य, सौंदर्य माधुर्य और लीला माधुर्य, इन ये चारों जो है भगवान के अंदर पूर्ण मिलते हैं। इवन राम अवतार में भी बताते हैं कि ये पूर्ण रूप में नहीं मिलते, जैसे उनके साथ अब सांख्य का आधा मिलता है, तापस रस तो पूरा ही बट सांख्य रस का आधा लोग गले में हाथ रखते हैं, एक आधा से गले में ले भगवान राम ने, सुग्रीव जी से मिल लिए, कभी हनुमान जी को लगा लिया, वो भी बड़े भगवान आ जाए ठीक है लगा लिया से, लेकिन यहाँ कृष्ण के साथ जो कर रहे हैं वो उठल कूद के सर पे बैठ जाते हैं, पीटते हैं ऊपर चढ़ के, कृष्ण उनके सर पे बैठ जाते हैं, साथ नहीं कर सकते, वो कृष्ण के साथ कर रही है यशोदा मैया। तो नल कुंवर और मणिकर्ण, तो अब जो है सबको लगा कि ओहो, अच्छा जैसे ही जो वृक्ष गिरे थे, आपको बताना भूल गए, नल कुंवर और मणिकर्ण बाहर निकल आए और बड़े खुश हुए, अरे मुक्ति मिल गई भैया, है ना, कितने टाइम तक ऐसे अकड़े पड़े थे, अभी देखो आदत खुल रहा है, सब बढ़िया हो गया, है ना। अभी कृष्णा को देखकर कहते भैया ये भगवान जो है प्रणाम चक्कर काटे, धन्यवाद भगवान आपने हमें जो है क्या कर दिया, मुक्त कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, अब हम आप ही जो है गुणगान करेंगे, आप ही का वो करेंगे, धन्यवाद नारद मुनि जी आपने इतनी बढ़िया जगह भेजा, भगवान के हाथों हमारा उद्धार करवाया। तो ये लोग जो है फर्स्ट फ्लाइट से सीधा अपने धाम। और इसके बाद हमारे जब खाना पे लोग कह रहे थे इन्होंने गिराया तो मैया ने उठा लिया, और उसके बाद क्योंकि समय संध्या हो चुकी थी और गांव के सब लोगों का हृदय है कृष्ण, इतनी बड़ी घटना हो, जो भी वृंदावन में कोई भी खतरनाक घटना होती थी उसके आजू बाजू कौन पाए जाते थे, कृष्ण, अब लोग शक होता था। अच्छा हम लोग सुबह शाम क्या सीखते हैं, भगवान कौन है, कौन है ऊपर, याद करते हैं कि कृष्ण कौन है, भगवान है, और उधर ये भूलना पड़ता है कि भगवान क्या है, कृष्ण, ये भूलना पड़ता है, तभी हिला होती है कि नहीं, नहीं समझे, यहां याद करना पड़ता है आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए कि भगवान कौन है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है, और वहां पहुंचने के बाद ये भूलना पड़ता है कि कृष्ण भगवान है, तभी तो पांच प्रकार के रसों में आस्वादन करो, क्योंकि तो ये सबको भूलना पड़ता है, तो योग माया जो भुला देती है, मैया को लगता नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम बस ऐसे बोल रहे हो, तो फिर वो मिर्चे वारना और ये सब करना, फिर बिठाया कृष्ण को कि खरोच तो लगी, दीप जलाओ देखो अंधेरे में, कृष्ण का शरीर को देख रहे हैं ऐसे से, कहीं कोई खरोच तो नहीं लगी, सबने दीप जला लिया, आरती उतार गई, कृष्ण की सारी जो है संकट दूर हो जाए, मिर्चे वारो और सब कुछ करा भगवान के लिए, कृष्ण देख रहे हैं कि सारी गोपियां सारे पूरा का पूरा वृंदावन आउट ऑफ लव एंड केयर के भाव से मेरे को तीर दिखा रहे हैं, मेरे शरीर में कहीं खरोच तो नहीं लगी, कितना सुंदर भाव है, लोगों के हृदय में दर्द है, कहीं कृष्ण को चोट ना लगे, और इस प्रकार जो है उनके शरीर में देखा जा रहा है, कृष्ण को सबके हाथों में दीप देख कर अति प्रसन्नता है। और भगवान ने कहा इनके प्रेम के बदले में क्या दूं, इसलिए भगवान जब कोई इस मास में दीपदान करता है तो भगवान को सब कुछ देना चाहते हैं, कई कई कल्पों के, कई कई जन्मों के पाप, तो कोई छोटी चीज है, पाप तो कुछ भी चीज नहीं, वो तो नाम लो तो खत्म हो जाते हैं, भगवान कहते हैं मैं क्या दे दूं इन लोगों को, क्यों, क्योंकि मेरे प्रति जो है इनका भाव जागृत हो रहे, जो कि इससे पिछले किसी जन्म में ब्रह्मा के एक दिन में 999 जो चतुर्युग बीतते हैं उसमें भी कहीं मेरे नाम की चर्चा नहीं होती या मेरी भक्ति की बात नहीं होती, ये तो अभी इस युग में आया हूं, तो जो लोग मेरे को पूजा कर रहे हैं, मेरी भक्ति कर रहे हैं, ये लोग मेरे साथ जाएंगे, वरना इन सबसे पहले युगों में तो लक्ष्मी नारायण और विष्णु या अन्य रूपों की पूजा होती, और फिर इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी आए ताकि हम लोगों को कृष्ण प्रेम का मार्ग दिखा सके, और वो कृष्ण प्रेम बहुत आसानी से उपलब्ध करा दिया हम लोगों के लिए, क्या करने से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस मंत्र मात्र से अगर इसका निरंतर जप करता है तो हृदय में जो कृष्ण प्रेम हमेशा से है उसको क्या करते हैं भगवान, उसकी कंडीशनिंग जो उसके ऊपर से है वो हटा देते हैं, अनकवर करते हैं, और फिर वो प्रेम जो है कृष्ण के प्रति हम उसको दिखा सकते हैं कृष्ण। तो इस प्रकार इस लीला में जब भगवान ने देखा तो भगवान को अच्छा लगा, तो इसलिए हम दीपदान करते हैं भगवान, ऐसा सुना हमने कहीं कथा में। तो इस प्रकार जब हम भगवान को दीपदान करते हैं, शास्त्र वर्णन है कि कई कई जन्मों के कल्पों के पाप समाप्त हो जाते हैं, स्वीकृतियां मिलती हैं, अज्ञात स्वीकृति मिलती है, और पुण्य जागृत होते हैं, और व्यक्ति जो है भक्ति में आ जाता है या भगवान के धाम चला जाता है, ऐसा। तो हमें नियमित रूप से दीपदान करना चाहिए, और आज ही का दिन है दीपावली का, आज के दिन भगवान राम जो है अयोध्या वापिस आए, और उनका अयोध्या वापिस आना और इससे पहले का जो पूरा वृत्तांत हम जानते हैं कि किस प्रकार एक पिता की आज्ञा को पालन करने के लिए, है ना, कुछ भी बोल सकते थे कि नहीं मैं हूँ बड़ा हूँ मुझे दीजिए, लेकिन नहीं, अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वनों में गए और उन वनों में जहाँ पर असुर थे उन सबका जो है वध किया। उसी तरह हम लोगों को भी चाहिए आज के दिन जिस प्रकार भगवान राम रावण जैसे असुर का भी वध कर कर वापस आए, उसी तरह चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हाँ कृष्ण के प्रति या भगवान राम के प्रति हमारे हृदय में प्रेम डेवलप हो, तो उससे पहले हमें जगह साफ करनी पड़ेगी, है ना। अपने हृदय से काम क्रोध लोभ मोह मद मसरे इन सारी चीजों को जो है चलाना पड़ेगा, इन सब चीजों को हटाना पड़ेगा और ये केवल हो सकता है भगवान के नामों से। इसलिए भक्तों को चाहिए वो पूरी तन्मयता के साथ पूरे हृदय से भगवान के पवित्र नामों को जप किया करें, क्योंकि ये जप ही है जो हमारे हृदय में इन जन्मों जन्मों के कलमश को समाप्त कर सकता है और फिर से हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम डेवलप कर सकता है। जिनकी कथाओं को आज हम लोग वर्णन कर रहे हैं, इस प्रकार हम लोग भी कृष्ण के साथ हो सकते हैं, हम लोग भी भगवान से कृष्ण के साथ खेल सकते हैं, उनको गले लगा सकते हैं, उनके साथ रास कर सकते हैं, वत्सल्य भाव में उनकी सेवा कर सकते हैं, उनकी है ना उनकी पूजा कर सकते हैं, उनके साथ धाम में रह सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम लोगों को अपने हृदय में उस प्रेम को जागृत करना पड़ेगा और उसको जागृत करने का माध्यम क्या है, भगवान के पवित्र नाम। इसलिए महाप्रभु ने इस हरि नाम को दिया ताकि वो सबके हृदय के प्रेम को जो कि सब हमेशा सुप्त अवस्था में है उसको फिर से प्रकाशित कर कर हर जीव को इस योग्य बना दे ताकि वो भगवान के साथ आध्यात्मिक जगत में वास कर सके। इससे पहले ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं थी किसी भी युग में, इन 999 युग में लास्ट ये अपॉर्चुनिटी केवल अब मिली है जब कृष्ण का अवतार हुआ और उसके बाद स्वयं कृष्ण द्वारा आए महाप्रभु के रूप में, और ऐसा जो है कृष्ण प्रेम इतनी आसानी से दे दिया, इतने प्रेम से सब लोगों में वितरित कर दिया ताकि वो लोग बस थोड़ी सी मेहनत करें और आध्यात्मिक जगत होते से। लेकिन यह आसान भी नहीं है, कलयुग दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन भौतिक आकर्षण बढ़ते जा रहे हैं, हर समय व्यक्ति को युद्ध करना पड़ रहा है अपने विचारों से अपने कर्मों से अपने आसपास के वातावरण से, हर समय ये दूषित वातावरण उस जीवात्मा को जो भगवान की ओर उन्मुख होने का प्रयास कर रही है उसको अपने प्रभाव से आकर्षित कर फिर से माया में धकेलने का प्रयास कर रही है। भक्तों का ये प्रयास अपने को बचाने का और भक्तों के संग का कथा में अपने हृदय को इन्वेस्ट करने का इसी जद्दोजहद से लड़ते लड़ते एक दिन क्या होगा कि व्यक्ति अर्थात भक्त भगवान को प्राप्त कर लेगा, भगवान की कृपा उस पर हो जाएगी। ये संघर्ष जो है ये चलता रहेगा। हम कई बार ऑटो में पीछे पढ़ते हैं लिखा होगा जीवन एक संघर्ष है, ये संघर्ष बताते हैं रोटी के लिए, ये संघर्ष बताते हैं सफलता के लिए, लेकिन भक्तों के लिए भी एक संघर्ष है और संघर्ष क्या है, अपनी इंद्रियों को इंद्रियों विषयों से दूर रखना, अपने मन को उन विचारों से दूर रखना जो हमें दूषित करती है, अपने इंद्रियों को उन विषयों से दूर रखना जो हमें पाप पूर्ण कर्मों में लगाती है, अपने आप को उन लोगों से दूर रखना जो हमारे मन को हमारे विचारों को दूषित करते हैं, उन उपकरणों से दूर रखना जो हमारे मन को कृष्ण से दूर करते हैं। तो अगर हम लोग इस प्रकार के सारे दूषित चीजों से अपने मन को अपने शरीर को दूर रखेंगे और इनको पॉजिटिव एंगेजमेंट देंगे, भगवान के मंदिर आना, दर्शन करना, दीपदान करना, कथा करना, कथा सुनना, हरिनाम लेना, संकीर्तन में भाग लेना, तो ये ज्यादा से ज्यादा करने से हमारे मन की सफाई होना शुरू होगी। मन विचार हमारा मन शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होंगे, विचार शुद्ध होंगे तो इन इंद्रियों का भी इतनी हिम्मत नहीं है कि आपके मन के पूछे बगैर कहीं चली जाए, है ना। और इसके लिए हमारे को बुद्धि को स्ट्रांग करना पड़ेगा और वो होगी कृष्ण कथा से। इसलिए हमें चाहिए नियमित रूप से कथा सुनने का प्रयास करें और भगवान के पवित्र नाम को जप करें ताकि कृष्ण को हम लोग जिस प्रकार यशोदा मैया उस वात्सल्य रस का आस्वादन कर रही है, गोपियां माधुर्य रस का आस्वादन कर रही है और कृष्ण के जो दूसरे सखा है वो मित्रवत उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं, वो दास्य स्वरूप में है स्वभाव में है, इस प्रकार के जो मुख्य अनुकूल भाव से अर्जित किए जाने वाले रस है उसका हम लोग भी आस्वादन कर सके। जो भक्त लोग ठीक प्रकार से वैष्णव अपराधों से बचते हुए भगवान के नामों का जप करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और प्रमाणिक गुरु के संरक्षण में रहकर भक्ति करते हैं, उनके लिए एक ही जीवन में कृष्ण प्रेम प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। मुश्किल ये तब बन जाता है जब हम लोग अपने अपनी आदतों के कारण या अपने अनर्थों के कारण अपने मन के वेग के कारण उन भक्ति की विधियों को ठीक प्रकार से नहीं स्वीकार करते। बताया जाता है कि अगर व्यक्ति इच्छा करे तो उस चीज को प्राप्त कर लेता है, लेकिन जब तक हमारे हृदय में इच्छा ही नहीं हो रही भगवान के धाम जाने की या कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए हमें वो इच्छा डेवलप करनी पड़ेगी। ताकि हम लोग इन लीलाओं का एक भाग बन सके, जो कि असंभव नहीं है, संभव है। हमारे आचार्य लोग, हमारे वैष्णव जन, इन सब लोगों ने इन ग्रंथों में इन सब चीजों के विषय में चर्चा की है। इसलिए भक्तों को चाहिए वो इन प्रभुपाद के ग्रंथों को, आचार्य के ग्रंथों को पढ़े, ताकि वो डेवलप कर सके अपना फेथ, अपना विश्वास बढ़ा सके भगवान की कथाओं में और इस पूरे प्रोसेस में, ताकि वो भी एक दिन भगवान के साथ इन लीलाओं का स्वाद ले सके। ठीक है, दामोदर मास की।